ਬਾਣੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਚੇਤਾਵਨੀ ਭਾਗ ਦੂਸਰਾ ਬਚਨ ਪੰਦਰਵਾਂ ਸ਼ਬਦਨਾਮਾ। ਤਜੋ ਮਨ ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਕਾ ਧਾਮ ਲਗੋ ਤੁਮ ਚੜ ਕਰ ਅਬ ਸਤਨਾਮ।
ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਯੇ ਬਚਨ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਫਰਮਾਏ ਗਏ ਸਤਸੰਗ ਕੇ ਹਿੰਦੀ ਅਨੁਵਾਦ ਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਯੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਮੇਂ ਆਪ ਸੰਤ ਮਤ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ, ਸੰਤੋ ਮਹਾਤਮਾਓ ਕੀ ਤਾਲੀਮ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਸੇ ਖੋਲ ਖੋਲ ਕਰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹੈਂ। ਆਪ ਫਰਮਾਤੇ ਹੈਂ, ਯੇ ਦੁਨੀਆ ਦੁੱਖੋਂ ਔਰ ਸੁੱਖੋਂ ਕੀ ਬਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਨਾ ਕਭੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਸੀ ਕੋ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਹੋ ਹੀ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਯੇ ਜੋ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਨਜ਼ਰ ਆਤੇ ਹੈਂ, ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਸਭ ਦੁੱਖੋਂ ਮੇਂ ਬਦਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਜਿਨ ਚੀਜ਼ੋਂ ਮੇਂ ਸੇ ਹਮ ਸੁੱਖ ਢੂੰਢਣੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈਂ, ਵਹਿ ਸਭ ਚੀਜ਼ੇ ਆਰਜ਼ੀ ਹੈਂ। ਇਸ ਲੀਏ ਉਨਕਾ ਸੁੱਖ ਔਰ ਆਰਾਮ ਭੀ ਆਰਜ਼ੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਕੇ ਆਨੇ ਮੇਂ ਇਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਜਾਨੇ ਮੇਂ ਹਮੇਂ ਉਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖ ਲੇਂ, ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਤੇ ਹੈਂ, ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਵਹਿ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏਂ, ਹਮ ਕਿਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਕੀ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੀਬੀ ਯਾ ਪਤੀ ਛੋੜ ਕਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵਹੀ ਘਰ ਨਰਕ ਬਨ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਆਨੇ ਕੀ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਾਤੀ ਹੈ ਤੋ ਮੁਕਦਮੋਂ ਮੇਂ ਫਸੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ, ਬਿਮਾਰੀਓਂ ਮੇਂ ਉਲਝੇ ਰਹਤੇ ਹੈਂ, ਚੋਰ ਯਾ ਡਾਕੂ ਉਸੇ ਲੈ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਉਸ ਵਕਤ ਹਮ ਕਿਤਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ। ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕੁਰਸੀ ਮਿਲ ਜਾਤੀ ਹੈ, ਹਮ ਕਿਤਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਅਗਰ ਲੋਕ ਉਠਾ ਕਰ ਜੇਲ ਖਾਨੋਂ ਮੇਂ ਡਾਲ ਦੇਂ, ਯਾ ਹਮਾਰੇ ਗਲੋਂ ਮੇਂ ਜੂਤੋਂ ਕੇ ਹਾਰ ਪਹਿਨਾਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂ, ਅਖਬਾਰੋਂ ਮੇਂ ਹਮਾਰੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂ, ਵਹੀ ਕੁਰਸੀ ਹਮਾਰੇ ਲੀਏ ਦੁੱਖ ਕਾ ਕਾਰਨ ਬਨਕਰ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ, ਸੁਰਤ ਸੁਨ ਬਾਤਰੀ ਤੇਰਾ ਧਨੀ ਬਸੇ ਆਕਾਸ਼। ਹੇ ਆਤਮਾ, ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਵਹਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਸੱਚਖੰਡ ਮੇਂ ਬੈਠਾ ਹੁਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਕੇ ਜਾਲ ਮੇਂ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਸੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਤੂੰ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕੇਗੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮਾਰੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕਾ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਜਬ ਤੱਕ ਹਮ ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਿਕ ਸੇ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ, ਕਿਸੀ ਕਾ ਅਸਲੀ ਮਾਇਨੇ ਮੇਂ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨੇ ਕਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਤੇ ਹੈਂ, ਧਾਮ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਭਾਈ, ਪਰਾਏ ਦੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਾਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ, ਪਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ। ਯੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਕੌਮ ਤੁਹਾਰੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਮ ਤੋ ਪਰਦੇਸੀਓ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਆ ਕਰ ਭਟਕਤੇ ਔਰ ਤੜਪਤੇ ਫਿਰਤੇ ਹੈਂ। ਹਮਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ, ਹਮਾਰੀ ਕੌਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਹਮਾਰਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾਲਿਕ ਕਾ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਆਪ ਦੇਖੇਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਸੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਵਲਾਇਤ ਲੈ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਉਸਕੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਵਹਿ ਤਲੀਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਵਹੀਂ ਉਸਕੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਹੋ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਵਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਂ ਲੱਗ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਉਨਕੋ ਹੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸੀ ਮੁਲਕ ਕੋ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਸਮਝ ਕਰ ਬੈਠ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਉਸਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਕਾ ਬਸ਼ਿੰਦਾ ਵਲਾਇਤ ਮੇਂ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਉਸਕੇ ਸਾਥ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਉਸਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੇਤਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਉਸਕੋ ਪਿਆਰ ਸੇ ਸਮਝਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅਸਲੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਤੇਰੇ ਲੀਏ ਤੜਪ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਤੇਰੇ ਬਹਿਨ ਭਾਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇਂ ਤੁਝੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਂ, ਤੇਰਾ ਮੁਲਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਅੰਦਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਔਰ ਬਹਿਨ ਭਾਈਓਂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਕਾ ਪਿਆਰ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਵਹਿ ਸਭ ਕੁਛ ਛੋੜ ਕਰ ਉਸ ਆਦਮੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਹਮੇਂ ਯਹਾਂ ਆ ਕਰ ਸਮਝਾਤੇ ਹੈਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਤੁਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਔਰ ਦੀਨ ਇਮਾਨ ਸਮਝ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇਸ ਮੇਂ ਸੇ ਕੁਛ ਵੀ ਤੁਹਾਰਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਨਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸਕੀ ਸ਼ਕਲੋਂ ਕੇ ਸਾਥ ਤੁਹਾਰਾ ਗਰਜ਼ੋਂ ਕਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। तुम्हारा असल सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है। जब तक तुम उसकी भक्ति करके उसके साथ मिलाप नहीं करोगे, तुम्हारा देह के बंधनों से, मरण जन्म के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हरख सोक का नगर एहो किया। ये जो रचना आप आंखों से देखते हैं, ये परमात्मा ने दुखों और सुखों की नगरी बनाई है। कोई इंसान ऐसा नहीं जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त होते हों, कभी दुखों का सामना ना करना पड़ा हो। ना कोई ऐसा इंसान मिलेगा जो हमेशा दुखी दुख भोगता हो, कभी उसको सुख का सांस ना आया हो। 10 दिन सुख के गुजर जाते हैं, थोड़ा बहुत दुखों का सामना करना पड़ता है। अगर 10 दिन दुखों में गुजरते हैं, थोड़े बहुत सुख के सांस आ जाते हैं। ये जितने भी अपने सुख हैं, ये पिछले जन्मों के पुण्यों के कारण हैं। जितने भी अपने दुख हैं, पिछले जन्मों के पापों के कारण हैं। पुण्य और पाप इकट्ठे होते हैं, तब हमें इंसान का जामा मिलता है। हमें इस शरीर में बैठकर उन पुण्यों का भी हिसाब देना है, उन पापों का भी हिसाब देना है। अगर पुण्यों के कारण सुखी होते हैं, तो पापों के कारण हमें दुख भी सहन करने पड़ते हैं। संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का इस दुनिया में आने का मकसद यही हो कि ये सुख की नगरी बन जाए, तो आप सोचें, आज तक जरूर बन जानी चाहिए थी। हिस्ट्री पढ़ के पता चलता है कि हर कौम, मजहब, मुल्क और वक्त के अंदर किस किस चोटी के महात्मा आए हैं। अगर ऐसे ऐसे संत महात्माओं के आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी ना बन सकी, तो हम क्या सोच रहे हैं कि हम इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? दुनिया के कांटे हम कितने भी इकट्ठे करने की कोशिश क्यों ना करें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। अगर हिम्मत करके अपने पाँव में जूते पहन लें, दुनिया के कांटे हमारे पाँव पर असर नहीं करेंगे। ये सुख दुख के मसले, ये सुख दुख की समस्याएं ना कभी किसी से हल हुई हैं, ना हो सकती हैं। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का, मालिक की भक्ति करने का ऐसा साधन और तरीका समझाते हैं, जिस पर चलकर हम दुखों और सुखों से ही ख्याल को ऊंचा ले जाते हैं। गुरु अमरदास जी कहते हैं, जिन्नी कर जाता अपना से सुखिए पाई। यहां स्वामी जी महाराज कहते हैं, लगो तुम चढ़कर अब सतनाम। अगर सुख हासिल करना है, सतनाम की खोज करो, परमात्मा की खोज करो, परमेश्वर की खोज करो। जब तक आत्मा परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के प्यार में नहीं लगती, परमात्मा से मिलाप नहीं करती, इसका कभी सुख और शांति हासिल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। दुनिया के अंदर भी जरूर थोड़े बहुत सुख मिलते हैं, बशर्ते कि हमारी लिव, हमारा ख्याल मालिक की भक्ति में लगा रहता हो। मैंने कई बार मिसाल दी है कि एक छोटा सा बच्चा पिता की उंगली पकड़कर मेले में जाता है। उसको मेले के अंदर हर चीज कितनी सुंदर दिखाई देती है। किसी जगह बच्चों के खिलौने हैं, किसी जगह मिठाई की दुकानें लगी हुई हैं, या बिजलियां जलती बुझती हैं और कई तरह के खेल हो रहे हैं। बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी मेले के साजो सामान से हासिल कर रहा है। अगर वह गलती से पिता की उंगली छोड़ बैठता है, वह सारा साजो सामान उसी जगह होता है, मगर वह रोना पीटना शुरू कर देता है, चिल्लाना शुरू कर देता है। फिर बच्चा खुद ब खुद महसूस करता है कि इस मेले में से वह खुशी उतनी देर हासिल कर सकता था जब तक उसने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा सबका पिता कौन है? परमेश्वर है, परमात्मा है। जब तक हमारी लिव, हमारा ख्याल उस मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार की ओर है, तब तक ही हम इस दुनिया में सुख और शांति हासिल कर सकते हैं। अगर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, ये सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। आप सोचकर देखें, जिनको दुनिया में परमात्मा ने हर एक नियामत बख्शी हुई है, जिंदगी की हर एक दात दी हुई है, वह भी सुखी नहीं है। जिंदगी का साथी भी अच्छा मिला हुआ है, सेहत भी अच्छी मिली हुई है, रुपए पैसे की भी मालिक ने कमी नहीं रखी है, उनकी समाज में भी बड़ी इज्जत है, यार दोस्त भी बड़े नेक हैं, लेकिन फिर कभी अकेले में बैठकर देखें, कभी खुशी नहीं आती, अपने अंदर किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती रहती है। सब कुछ होने के बावजूद ये अकेलेपन का एहसास हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता। ये आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ। जब तक इसे अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, इसके अंदर कभी सुख नहीं आ सकता, शांति नहीं आ सकती। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जब तक ये आत्मा परमात्मा की भक्ति में नहीं लगती, इसका सुख हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। एक तस्वीर के दो रुख होते हैं। सामने की ओर से देखने पर कितनी सुंदर नजर आती है, उसका सुनहरा फ्रेम भी अच्छा लगता है, शीशा भी बड़ा खूबसूरत दिखाई देता है। उसी तस्वीर को पिछली तरफ से देखें, गत्ता और कील ही नजर आएंगे, बड़ी बदसूरत लगती है। इसी तरह दुनिया को महलों में रहते देखकर, हवाई जहाजों या बड़ी बड़ी कारों में सैर करते देखकर, अच्छे अच्छे होटलों में जेवर पहनकर फिरते देखकर, कई दफा सोच लेते हैं कि इस दुनिया के जीव बड़े अकलमंद हैं, वे बड़े खुश होंगे। संत महात्मा हर एक की अंदर की हालत जानते हैं, इसलिए गुरु नानक साहब ने कहा था, नानक दुखिया सब संसार। दुनिया के सब जीव अपनी अपनी जगह दुखों और मुसीबतों से भरे हुए हैं। असली सुख और शांति केवल उसे ही है जिसने दुनिया में से मन को निकालकर मालिक की भक्ति, मालिक के प्यार में लगाया हुआ है। इसलिए सहजोबाई कहती हैं, धनवंते सभी दुखी, निर्धन दुख का रूप, साध सुखी सहजो कहे पायो भेद अनूप। जिनके पास बहुत धन दौलत है, जो सेठ साहूकार हैं, राजा महाराजा हैं, वे भी सब दुखी हैं, उनको किस चीज का दुख है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, वड़े वड़े जो दीसें लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता है 24 घंटे हमें अंदर से खाए जाती है, इससे बड़ा और दुनिया में कौन सा रोग हो सकता है। जिन बेचारों के पास खाने पीने का, रोटी कपड़े की ही फिक्र लगी हुई है, उन्हें तो दुख होना ही है। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर समझाया करते थे कि एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी देखता है कि गर्मी का मौसम है, इन बेचारों को ठंडा पानी पीने को नहीं मिलता, वह थोड़ा बहुत पैसा खर्च करके बर्फ और शरबत बनाकर उन कैदियों को देता है। उसने कैदियों पर तरस खाकर बड़ा अच्छा उपकार किया। दूसरा परोपकारी सोचता है कि शायद इन बेचारों को अच्छा भोजन खाने को नहीं मिलता, उसने और ज्यादा रुपया पैसा खर्च किया, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे खाने बनाकर देने शुरू कर दिए। उसने भी कैदियों पर बड़ा अच्छा उपकार किया, शायद पहले से ज्यादा अच्छा उपकार किया। तीसरा परोपकारी महसूस करता है कि सर्दी का मौसम बड़े जोर से चला आ रहा है, इन गरीबों के पास फटे पुराने कपड़े हैं, उसने और ज्यादा पैसा खर्च करके उनको अच्छे अच्छे गर्म कपड़े बनवाकर देने शुरू कर दिए। अब जितने भी परोपकारी हैं कैदियों पर तरस खाकर उपकार करते चले जा रहे हैं, जिससे कैदियों की हालत पहले से अच्छी होती चली जा रही है। वे सी क्लास से ए क्लास के कैदी बन गए हैं, लेकिन बावजूद सारे परोपकारियों के वे सब जेल खाने के अंदर ही बंद रहते हैं और कैदी ही कहलाते हैं। चौथा परोपकारी जिसके पास जेल खाने की चाबी थी, उसने चाबी लगाकर जेल खाने का दरवाजा ही खोल दिया और कैदियों को हमेशा के लिए आजाद कर दिया। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा परोपकार है, वह चाबी वाले का उपकार है। इस तरह संत महात्मा इस रचना के अंदर समाज सुधारक बनकर नहीं आते, वह दुनिया में आर्थिक या राजनैतिक सुधार करने के लिए नहीं आते, वह तो हमें देह के बंधनों से आजाद करते हैं ताकि हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएं, हमारा हमेशा के लिए मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो जाए। वह हमें वह साधन, वह तरीका समझाते हैं जिस पर चलकर हम लेने देने का हिसाब भी खत्म कर सकें और देह में बैठकर चार दिन सुख और शांति के भी काट लें और हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो सकें। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार के साथ कहते हैं कि दुनिया के सैर रंग तमाशे देखकर मत भूलो, यहां तो दुख ही दुख हैं, मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। अगर तुम सुख हासिल करना चाहते हो, शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो उस मालिक की भक्ति करो, मालिक की खोज करो, मालिक से मिलाप करो।
दिनाचार तन संग बसेरा फिर छूटे ये ग्राम।
अब आप समझाते हैं कि ये जो हमारा इस रचना के साथ संबंध है केवल इस शरीर के कारण है। जब तक हम इस शरीर में बैठे हुए हैं, ये बेटे बेटियां, रिश्तेदार, यार दोस्त, बहन भाई, कौम मजहब, मुल्क, जायदाद, धन दौलत वगैरह सब हमें अपने दिखाई देते हैं, इन्हें अपना बनाने में लगे हुए हैं। जिस वक्त देह का साथ छूट जाता है, हम हर चीज से अलग होकर खड़े हो जाते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज प्यार से कहते हैं कि जिस शरीर के कारण तुम्हारा इस दुनिया से संबंध है, जिसके कारण इस रचना को अपना समझे बैठे हो, तुम अच्छी तरह विचार करो कि क्या ये शरीर तुम्हारा अपना है। ये तो काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। किसी को 50-60 साल के लिए मिला है, किसी को 80-90 साल के लिए मिला है। जितने जितने श्वास मालिक ने बख्शे हैं, भोगने के बाद हर एक को देह यहीं छोड़ जाना है। किसी की देह अग्नि के स्पुर्द होकर रह जाती है, किसी की मिट्टी के स्पुर्द होकर रह जाती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सारा दिन देह के हार श्रृंगार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए परमात्मा ने इंसान का जामा दिया है, शरीर में बैठकर उसके बारे में भी सोच विचार करना चाहिए। ना तो देह को इतना दुख देना चाहिए कि इसमें बैठकर हम मालिक की भक्ति ही ना कर सकें, ना इसको इतना सुख और आराम देना चाहिए कि ऐशो इशरत शराबों कबाबों की तरफ ख्याल चला जाए। इस देह से असली काम लेना है। वह असली काम क्या है? मालिक की भक्ति, मालिक का प्यार है। हम ये भी विचार नहीं करते कि देह में बैठकर अहंकार या गुरूर किस चीज का करते हैं। जवानी का अहंकार करते हैं। क्या हमें कभी किसी का बुढ़ापा नजर नहीं आता? क्या हम कभी उस बुढ़ापे की उम्र में नहीं जाएंगे? हमें सुंदरता का, खूबसूरती का अभिमान है। कभी अस्पताल में जाकर बीमारों की शक्लें नहीं देखी? पीलिया हो जाए, चेचक निकल आए, अपनी शक्ल ही शीशे में देखनी मुश्किल हो जाती है। या हमें हुकूमत का नशा है? बड़े बड़े नेताओं को, जिनको हम लेटकर माथे टेका करते थे, लोगों ने गोलियों का शिकार बना दिया। या हमें धन दौलत का गुरूर है? बड़े बड़े सेठों, साहूकारों को, राजाओं महाराजाओं को कंगालों की तरह सड़कों पर फिरते देखा है। हम अहंकार या गुरूर किस चीज का करते हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं, मन रे क्यों गुमान अब करना, तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। कौन सी चीज का अहंकार करते हो? शरीर का? इसे तो अग्नि या मिट्टी के स्पुर्द हो जाना है। तुमको धर्मराज के सामने पेश किया जाएगा। ख्वाहिशों और तृष्णाओं के अनुसार जहां भी वह ठीक समझेगा, वहां जाकर जन्म लेना पड़ेगा। एक देह के बंधनों से छुटकारा हासिल नहीं करते। दूसरा शरीर पहले ही तैयार खड़ा होता है, उसमें बाद में आते हैं। मौत आंखों के सामने आकर पहले ही खड़ी हो जाती है। हर एक को 10 नंबरियों की तरह हथकड़ी लगी ही रहती है। जिसके रोज कचहरी से वारंट ही निकलते रहें, जिसको रोज पुलिस वाले तलब ही करते रहें, आप सोचें वह अहंकार किस चीज का कर सकता है, गुरूर किस चीज का कर सकता है। हिस्ट्री पढ़कर देख लो, बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े डिक्टेटर, जिनके मुंह से निकला हुआ लफ्ज कानून बन जाता था, आज उनकी हस्ती कहाँ है? उनकी कब्रों को हम ठोकरें मार मार कर गुजरते हैं। उनकी हड्डियां हमारे पैरों के नीचे आकर खराब हो रही हैं। उनकी मिट्टी उड़कर हमारी आंखों को अंधा कर रही है। क्या हम बिल्कुल भूल चुके हैं कि हमारी कब्रों को भी लोग इसी तरह ठोकरें मारेंगे? हमारी हड्डियां भी इसी तरह लोगों के पैरों के नीचे आकर खराब होंगी? हमें भी मिट्टी में समाकर लोगों की आंखें अंधी करनी है? हम सोचते हैं मौत तो शायद लोगों के लिए है, हमारे लिए या तो दुनिया की ऐशो इशरत है, या दुनिया की धन दौलत है, या शराबों कबाबों की लस्तें हैं। स्वामी जी महाराज हमें प्यार से समझाते हैं कि कभी उस वक्त को तो आंखों के आगे रखकर देखो, उस वक्त कौन तुम्हारी सहायता करेगा, तुम्हारी कौन मदद करेगा?
धन दारा सुत नाती कहीं ये नहीं आवे काम।
अब और ज्यादा खुलकर समझाते हैं कि ये धन दौलत, बेटे बेटियां, यार दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई, जिनके लिए हम सारा दिन मेहनत करते हैं, जिंदगी के कितने कितने कीमती असूलों को कुर्बान करते हैं, कई तरह की चोरियां, ठगियां और बेईमानियां करते हैं, सोच कर देख लें, इनमें से कोई हमारी सहायता नहीं करेगा। ये सब आसपास बैठे रह जाएंगे। मौत के वक़्त किसी को ये भी पता नहीं चलता कि मौत के फरिश्ते आए कहाँ से थे और हमें कान से पकड़कर ले किस तरफ गए हैं। जिनको इतना भी पता नहीं कि मौत के फरिश्ते हमें कानों से पकड़कर ले किस तरफ जाते हैं, आप सोचें वह बेचारे हमारी मदद क्या कर सकते हैं। इसलिए महात्मा प्यार से कहते हैं कि इनमें से कोई भी अपना नहीं है। आप देखें, नदी में बहुत सी लकड़ियां बहती हुई नजर आती हैं। एक लहर उठती है, सब लकड़ियों को इकट्ठा कर देती है। दूसरी लहर उठती है, सब लकड़ियों को बिखेर देती है। कर्मों की लहर उठी, रिश्तेदार, बहन भाई, यार दोस्त मिनटों सेकंडों में इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरे कर्मों की लहर उठी, सब अपने अपने रास्ते चल देते हैं। महात्मा प्यार के साथ कहते हैं कि धन दौलत भी वृक्ष की छाया है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है। ये जायदादें जो हमारे नाम पर हैं, पहले हमारे बुजुर्गों के नाम पर रह चुकी हैं। जब हमने इनको उनके नाम पर नहीं रहने दिया, इनको हमारे नाम पर कौन रहने देगा? मरने वाला बाद में मरता है, बंटवारा करने वाले पहले ही लड़ने झगड़ने में लगे होते हैं। इसलिए महात्मा प्यार से समझाते हैं कि जिनके मोह या प्यार में फंस कर तुम भटकते फिरते हो, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारा साथ नहीं देगी। गुरु नानक साहब कहते हैं, तंदे तावत जग बाध्या, न बुझे विचार, जम्मण मरण विसारिया, मनमुख मुगद गवार। कि हम दुनिया के जीव कितने मनमुख हैं, मूर्ख हैं, गंवार हैं, कि सारा दिन पेट के धंधों में लगे हुए हैं, दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। जिस मकसद के लिए मालिक ने भेजा था, उस तरफ हमारा भूले भटके भी कभी ध्यान नहीं जाता। मालिक ने हमें यहाँ भक्ति के लिए मौका दिया था, पर हम उस काम को बिल्कुल भुलाए बैठे हैं। गुरु रामदास जी कहते हैं, काया नगर नगर है नीको, विच सौदा हर रस कीजे। भाई, तेरी देह बहुत ही सुंदर शहर है, क्योंकि इसके अंदर बैठकर तू हरि का सौदा खरीद सकता है। जो सौदा हमें खरीदना चाहिए, जिसका हमें असल में फायदा पहुंचना है, उस तरफ हमारा ख्याल नहीं जाता। जिन चीजों को हमें यहीं छोड़ जाना है, उनके लिए भटकते और तड़पते फिरते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज हमें गफलत की नींद से बेदार करते हैं कि हर एक को मालिक की खोज करनी चाहिए, मालिक की भक्ति करनी चाहिए।
श्वास दुधारा नित ही जारी, एक दिन खाली चाम।
आप दो बड़ी सुंदर मिसालें देकर समझाते हैं कि देखो, एक तालाब पानी से कितना ही भरा हुआ क्यों ना हो, एक नल लगाकर खोल दें, सारा पानी बाहर बह जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि इसी तरह हमारा शरीर श्वासों का भंडार है। जब तक ये श्वासों का भंडार है, हम इस दुनिया के काम काज में लगे हुए हैं, दुनिया के कारोबार में दौड़ते फिरते हैं। हम भूले बैठे हैं कि जिस वक़्त ये श्वासों का भंडार खत्म हो जाएगा, टेलीफोन चले जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्तेदार बहन भाई मिनटों सेकंडों में इकट्ठे हो जाएंगे, जिस देश से इतना प्यार किया करते थे, उसको कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर उठाकर उसको अग्नि या मिट्टी के स्पुर्द कराते हैं। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते हैं, जिस तरह तिनका टूट गया, तेरा मेरा रिश्ता टूट गया। ईसाई या मुसलमान मिट्टी की मुट्ठी कब्र में डाल देते हैं कि जो मेरे लिए आज मिट्टी की मुट्ठी है, वह मेरे लिए तू है। जिनके लिए सारी उम्र गुजार दी, जिनके लिए इतनी मुसीबतें सहन की, आप सोचें मिनटों सेकंडों में उनसे रिश्ता टूट जाता है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि भाई, तेरा श्वासों का भंडार जरूर खत्म हो जाएगा। 60 साल के बाद खत्म हो जाए, 70-80 साल के बाद खत्म हो जाए, श्वासों का भंडार खत्म होने से पहले जिस मकसद के लिए तुझे मालिक ने इंसान का जामा दिया है, देह में बैठकर उसको पूरा करने की कोशिश कर। गुरु अर्जन देव जी ने कहा था, 84 जोन सबाई, मानस को प्रभ दी वड्याई, इस पौड़ी ते जो नर चूके, सो आए जाए दुख पाएंदा। ये इंसान का जामा सीढ़ी का आखिरी डंडा है। कोशिश करेंगे मकान की छत पर चढ़ जाएंगे। अगर आखिरी डंडे से भी अपना पैर फिसलता है हम सीधे नीचे आकर गिरते हैं। इसलिए महात्मा कहते हैं कि इस मौके से पूरा पूरा फायदा उठाना चाहिए।
मशक समान जाने ये दे जाम।
एक और मिसाल देते हैं कि मश्क चमड़े की बनी होती है, उसमें हवा भरी जाती है और हम उसका सहारा लेकर पानी को पार करके दूसरे किनारे चले जाते हैं। लेकिन अगर मश्क में से हवा निकल जाए, मश्क खुद भी पानी की तह में बैठ जाती है और जो उसका सहारा लेकर पानी पर तैरता है वह भी गोते खाने शुरू कर देता है, वह भी पानी की तह में ही बैठ जाता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हमारा शरीर भी मश्क की तरह है, इसमें सांसों की हवा भरी हुई है। जब तक सांसों की हवा भरी हुई है हम अपनी जिंदगी में दुनिया के कामकाज में लगे हुए हैं और लोग भी हमारा सहारा लेकर अपनी जिंदगी का वक्त काट रहे हैं। लेकिन जब ये सांसों की हवा खत्म हो जाएगी, हमारी हस्ती तो खत्म हो ही जाएगी, जो लोग हमारा सहारा लेकर अपना वक्त गुजार रहे हैं वह भी घबरा जाएंगे, वह भी रोना पीटना शुरू कर देंगे। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि अच्छी तरह देख लें हमेशा कौन सी मश्क में हवा भरी रही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि, योद्धा, बहादुर, राजा महाराजा तक की मश्कों में से हवा निकल गई, हमारी मश्क में से भी एक दिन हवा जरूर निकल जाएगी। इसलिए फरमाते हैं कि देह में बैठकर गुरूर ना करो, अहंकार ना करो, सारी उम्र दुनिया के धंधों, दुनिया के कारोबार में ही ना फंसे रहो। जिस मकसद के लिए मालिक ने भेजा है उसके बारे में भी सोच और विचार करो। संत महात्मा केवल हमारी हालत ही बयान करने के लिए नहीं आते, केवल हम पर तरस खाने के लिए ही नहीं आते, हमें यहाँ से निकालने का तरीका भी समझाते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं। वह कौन सा तरीका समझाते हैं, कौन सा रास्ता दिखाते हैं, आप आगे इशारा करते हैं।
तू अचेत गाफिल हो रहता सुने न मूल कलाम।
आप फरमाते हैं कि मालिक की दरगाह से दिन रात आंखों के पीछे दुनकारें उठ रही हैं। वह मूल कलाम जिसको आम ऋषियों मुनियों ने, संत महात्माओं ने शब्द या नाम कहकर याद किया है, वह निर्मल नाद, वह दिव्य धुनि हर एक की आंखों के पीछे दिन रात धुनकारें दे रही है। जब तक आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके हम उस धुन को, निर्मल नाद या शब्द को नहीं पकड़ते, हमारा देह के बंधनों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकता। गुरु नानक साहब कहते हैं, सूहट पिंजर प्रेम कै बोले बोलन हार, सच चुगे अमृत पिए उड़ेता एका वार। हमारा शरीर पिंजरा है, हमारी आत्मा तोता है। जिस तरह एक तोता पिंजरे से प्यार करके कई तरह की बोलियां बोलता है, उसी तरह हमारी आत्मा इस शरीर से प्यार किए बैठी है। इसके अंदर बैठकर कभी अच्छी बोली बोलती है, कभी मंदी बोली बोलती है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि अगर तोता पिंजरे का प्यार छोड़ दे तो वह पिंजरे की कैद से ही आज़ाद हो जाता है। अगर आत्मा देह का प्यार छोड़ दे तो वह देह के बंधनों से आज़ाद हो सकती है। लेकिन जन्म जन्म से तोते का पिंजरे से प्यार पैदा हो चुका है, मतलब आत्मा का देह से प्यार पैदा हो चुका है। इसलिए इससे देह का प्यार किस तरह छूट सकता है? गुरु साहब कहते हैं, सच चुगे अमृत पिए उड़ेता एका वार। हर एक की आंखों के पीछे सच का चोगा है, अमृत रूपी नाम बरस रहा है। अगर आप आंखों के पीछे ख्याल इकट्ठा करके उस अमृत को पीना शुरू कर दें, अंदर उस शब्द के चोगे को चुगना शुरू कर दें, आप हमेशा के लिए देह के बंधनों से आजाद हो जाएंगे। मैं कई बार अर्ज कर चुका हूं कि जितने भी अपने मजहब हैं, सबके रस्मों रिवाज, शरीयत या कर्म कांड देखने में अलग अलग नजर आते हैं, क्योंकि ये हमारे खुद के पैदा किए हुए हैं। लेकिन जो रूहानियत है, हकीकत है, सार वस्तु है, एसेंस ऑफ ट्रुथ है, वह हर एक मजहब की तय में एक ही चीज होती है। संत महात्मा हमारे अंदर केवल उस रूहानियत को हासिल करने का शौक और प्यार पैदा करते हैं। वह रूहानियत सारे मजहबों की, हर एक इंसान की सांझी है। वह रूहानियत क्या कहती है? वह कहती है कि मालिक सबके अंदर है, मालिक से मिलने का रास्ता हम सबके अंदर है। हमें अंदर जाकर उस रूहानियत की खोज करके अपना रूहानी सफर तय करना है और वापस मंजिल मकसूद पर पहुंचना है। उस रूहानी सफर को कोई शब्द की कमाई कहता है, कोई नाम की कमाई कहता है, कोई आकाशवाणी को सुनना कहता है, कोई निर्मल नाद को पकड़ना कहता है, उसको कोई कलामे इलाही बांगे आसमानी कहता है, निदाए सुल्तानी कहता है, तो कोई ताओ कहता है, कोई वर्ड या लोगोस कहता है, कोई होली घोष्ट कहता है, कोई राम नाम कहता है, कोई राम धुन कहता है। महात्मा अलग अलग लफ्जों के जरिए हमारे अंदर उस एक रूहानियत को हासिल करने का शौक पैदा करते हैं। यहाँ स्वामी जी महाराज उसको मूल कलाम कहकर याद करते हैं। आप इशारा करते हैं कि जब तक हम ख्याल को अंदर उस मूल कलाम मतलब शब्द या नाम से नहीं जोड़ते, हम में से किसी का भी देह के बंधनों से छुटकारा हासिल करने का कभी सवाल ही पैदा नहीं होता। हर महात्मा की वाणी में जहां शब्द की धुनकार धुनों का जिक्र आता है, वहां साथ ही शब्द की ज्योति या प्रकाश का भी जिक्र आता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, अंतर ज्योत निरंतर बाणी साचे साहेब स्यों लिवलाई, कि हर की आंखों के पीछे ज्योति जल रही है। जब तक हम उस ज्योति के दर्शन नहीं करते, उस अंदर की वाणी की आवाज को नहीं पकड़ते, हमारा रचना में से मोह या प्यार नहीं निकल सकता, हमारा परमात्मा के साथ मोह या प्यार नहीं हो सकता। पलटू साहब कहते हैं, निकसे एक आवाज चिराग की ज्योति माही, ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नहीं। जो गुरुमुखों के समझाने के अनुसार समाधि लगाते हैं, वह अपने अंदर उस शब्द की आवाज को भी सुनते हैं, उस शब्द के प्रकाश को भी देखते हैं। हजरत ईसा ने इशारा किया है, इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शेल बी फुल ऑफ लाइट। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक यहां होना, दुई यहां दूर हो जावे, दृष्टि ज्योत में धरना। आप ख्याल को समेट कर नौ द्वारों में से निकाल कर आंखों के पीछे लाएं, इस तरह आप द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाएंगे। जिस वक्त आप एकता में आ जाएंगे, वहां आपको एक ज्योति जलती नजर आएगी, जिस ज्योति के आपको अपने अंदर दर्शन करने हैं। कबीर साहब कहते हैं, दीवा बले अगम का बिन बाती बिन तेल। वह अगम की ज्योति है, उसको ना कभी बत्ती की जरूरत पड़ती है, न कभी तेल की। हम मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों, गुरुद्वारों में जितनी भी ज्योतियां, दिए या मोमबत्तियां जलाते हैं, उनको बत्ती की जरूरत पड़ती है, उनको तेल की भी जरूरत पड़ती है। संत महात्मा शब्द या नाम की उस ज्योति का जिक्र करते हैं जिसको आज तक कभी बत्ती की जरूरत नहीं पड़ी, तेल की जरूरत नहीं पड़ी। महात्मा बुद्ध ने उसको अखंड ज्योति कहकर याद किया है, जो कभी बुझती नहीं। ये ज्योति हर एक की आंखों के पीछे जल रही है। वह ऐसा प्रकाश है जिसने हमें जिंदगी दी है, उसके जरिए ही हमें अमर जीवन प्राप्त करना है, मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हासिल करना है। इसलिए यहाँ स्वामी जी महाराज उस शब्द की ज्योति का जिक्र करते हैं, उस नाम के प्रकाश का जिक्र करते हैं और उस शब्द की धुनी की तरफ इशारा करते हैं। आप देखें, हर मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे में ज्योति जलाई जाती है, घंटे और शंख की आवाज पैदा की जाती है। गुरुद्वारों के अंदर चले जाएं, हम ज्योति जलाते हैं, घंटा और शंख बजाते हैं। मंदिर के अंदर चले जाएं, बरामदे में घंटा लगा होता है, अंदर जाएं तो ज्योति जलती नजर आएगी। गिरजे के अंदर चले जाएं, वह भी घंटा बजाते हैं, अंदर मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। मुसलमानों की मजारों पर चले जाएं, मस्जिदों में चले जाएं, वे नगारा बजाते हैं, बांग देते हैं और रात को चिराग जलाते हैं। हम कभी सोचने की कोशिश नहीं करते कि जिस जगह जाकर हम मालिक की भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, वहीं ये ज्योति क्यों जलाई जाती है, घंटे और शंख की आवाज़ क्यों पैदा की जाती है। ऋषियों मुनियों संतों महात्माओं गुरु साहबान ने मालिक के भक्तों पीर पैगंबरों ने हमें समझाया था कि ये शरीर असली मंदिर है गुरुद्वारा है गिरजा है। अगर तुम्हें मालिक का प्रकाश देखना है उसके शब्द की ध्वनि को सुनना है तो शरीर रूपी मंदिर मस्जिद या गिरजे के अंदर जाओ। हम नकल के अंदर उलझ गए असल के अंदर जाकर ज्योति के दर्शन नहीं किए घंटे और शंख की आवाज़ नहीं सुनी। ये चीज़ें हमें समझाने के लिए थी कि इस तरह की ज्योति तुम्हारे अंदर जलती है इस तरह की आवाज़ें तुम्हारे अंदर पैदा हो रही हैं। हम इनमें ही उलझ गए इनसे फ़ायदा उठाकर शरीर के अंदर जाकर शब्द का प्रकाश नहीं देखा शब्द की घंटे और शंख जैसी आवाज़ नहीं पकड़ी इसलिए हम बाहर ही बाहर उलझ गए और यहीं वहमों और भ्रमों में फंसकर मरण जन्म के दुखों में भटकते रहे। स्वामी जी महाराज हमें प्यार से समझाते हैं कि जब तक हम अंदर शब्द को नहीं पकड़ेंगे हमारा मरण जन्म के दुखों से कभी किसी हालत में छुटकारा नहीं हो सकेगा।
माया नार पड़ी तेरे पीछे क्यों नहीं छोड़त काम।
अगर वह शब्द या नाम हमारे हर एक के अंदर धुनकारें देता है अगर वह ज्योति और प्रकाश मालिक ने हर एक के अंदर रखा हुआ है तो हम उसको सुनते क्यों नहीं हम उसको अंदर देखते क्यों नहीं हम अंदर उस रूहानी सफर को क्यों नहीं तय करते। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि हम माया के जाल में फंसकर मोह की मीठी नींद सोए हुए हैं हम विषय विकारों में फंसे हुए हैं कौमों मजहबों मुल्कों के झगड़े बेटे बेटियों के प्यार में फंसे हुए हैं। जब तक इधर से हमारा ख्याल निकलकर उस नुक्ते पर इकट्ठा नहीं होता जहां दाता दाद दे रहा है बख्शिश कर रहा है जिस जगह शब्द या नाम हमारे अंदर धुनकारें दे रहा है जिस जगह शब्द या नाम का प्रकाश हो रहा है जिसको पकड़कर ही अंदर रूहानी सफर तय कर सकते हैं तब तक हम असली मंजिल मकसूद पर कैसे पहुंच सकते हैं। किस तरह रचना में से मोह या प्यार निकालना है किस तरह आंखों के पीछे ख्याल को इकट्ठा करके उस शब्द को अंदर से पकड़ना है इसके बारे में स्वामी जी महाराज आगे फरमाते हैं।
बिन गुर दया छुटो नहीं या से भजो गुरु का नाम।
अगर हम रचना में से मोह या प्यार निकालकर अंदर रूहानी सफर तय करके मंजिले मकसूद पर पहुंचना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। स्वामी जी महाराज कहते हैं भजो गुरु का नाम। इसके लिए हमें गुरुमुखों की संगत करनी पड़ेगी साधु संतों और महात्माओं की सोबत करनी पड़ेगी। वह क्या करेंगे हमें शब्द या नाम की कमाई करने का तरीका बताएंगे। संत महात्मा समझाते हैं कि हमारे अंदर आत्मा और मन की जगह सबकी आंखों के पीछे है यहां से हमारा ख्याल उतरकर नौ द्वारों के जरिए सारी दुनिया में फैला हुआ है। नौ द्वारे क्या हैं? दो आंखें हैं दो कान के सुराख हैं दो नाक के सुराख हैं मुंह है नीचे दो इंद्रियों के सुराख हैं। यहां बैठे हमें कभी बाल बच्चों का ख्याल आता है कभी घर के कारोबार का ख्याल आता है कभी दुकान के ग्राहकों का ख्याल आता है। मन कभी किसी का निश्चल नहीं बैठता किसी न किसी चीज की सोच और विचार में लगा ही रहता है। ये जो हमारे मन को सोच विचार करने की आदत पड़ी हुई है इसको महात्मा सिमरन करना कहते हैं। सिमरन करने की हर एक को कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। आप कितनी अंधेरी कोठरियों के अंदर अपने आप को क्यों न बंद कर लें आप वहां नहीं होगे आपका ख्याल सारी दुनिया में फैला हुआ होगा। जिसका भी हम सिमरन करते हैं उसकी शक्ल भी हमारी आंखों के आगे आ जाती है। अगर बेटे बेटियों का सिमरन करते हैं बेटे बेटियां आंखों के आगे आ जाएंगे। अगर घर के कारोबार का सिमरन करते हैं घर के कारोबार आंखों के आगे आ जाते हैं। इसको महात्मा ध्यान धरना कहते हैं। जिसका भी हम सिमरन करते हैं अपने आप ही उसका ध्यान करना शुरू कर देते हैं। जिनका हम सिमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, उनके साथ धीरे धीरे हमारा मोह या प्यार पैदा हो जाता है। उनसे मन का इतना लगाव, इतना प्यार और मोह पैदा हो जाता है कि रात को सपने भी उन्हीं के आते हैं। मौत के वक्त उन्हीं की शक्लें सिनेमे के स्क्रीन की तरह हमारी आंखों के आगे आकर खड़ी हो जाती हैं। जहां आसा तहां बासा, आखिरी वक्त जिधर हमारा ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रौ में बहना शुरू कर देते हैं। कौन सी चीज हमें बार बार देह के बंधनों में लाई, दुनिया का मोह या प्यार लाया? ये किसने पैदा किया? सिमरन और ध्यान ने पैदा किया। किन चीजों के सिमरन और ध्यान ने? जिनको नाश हो जाना है, फना हो जाना है। महात्मा समझाते हैं कि सिमरन और ध्यान की हर एक को कुदरती आदत पैदा हो चुकी है। आप मन की इस आदत से फायदा उठाएं। सिमरन को सिमरन काटेगा, ध्यान को ध्यान काटेगा। लेकिन आप उस चीज का सिमरन करें, ध्यान करें, जिसे कभी नाश नहीं होना, कभी फना नहीं होना। वह कौन है? केवल एक परमात्मा है, परमेश्वर है। इसलिए महात्मा हमें उस परमात्मा के नाम के सिमरन का तरीका बताते हैं। हमें गुरुमुखों की बताई हुई युक्ति के अनुसार सिमरन के जरिए अपने फैले हुए ख्याल को आंखों के पीछे वापस लाना है। जब ख्याल दोनों आंखों के दरमियान इकट्ठा करते हैं, यहां ध्यान टिकता नहीं, क्योंकि इसको बार बार इंद्रियों के भोगों की तरफ दौड़ने की आदत पड़ी हुई है। जब तक किसी न किसी के स्वरूप का ध्यान नहीं देते, इसको यहां ठहरने की आदत पैदा नहीं होती। किसके स्वरूप का ध्यान देना है? मालिक के स्वरूप का तो हमें पता नहीं। मालिक का कोई रंग नहीं जानता, मालिक का कोई रूप नहीं जानता। अब जिस परमात्मा को कभी देखा नहीं, जिसके रंग रूप का कुछ पता नहीं, उसकी भक्ति किस तरह कर सकते हैं? उसके साथ प्यार किस तरह पैदा कर सकते हैं? उसका ध्यान किस तरह कर सकते हैं? गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, हर का सेवक सो हर जेहा, पेद न जानो मानस देहा। जो मालिक के भगत और प्यारे हैं, वे मालिक की भक्ति करके मालिक का रूप हो जाते हैं। उनमें और परमात्मा में कोई भिन्न और भेद नहीं होता। उनका परमात्मा से क्या रिश्ता है? ज्यो जल तरंग उठे बहु भांति, फिर सलले सलल समाइंदा। जिस तरह समुन्द्र में दो चार मिनट के लिए एक लहर उठती है और फिर वापस जाकर समुन्द्र में ही समा जाती है, जो एक लहर का समुन्द्र से रिश्ता है, वही मालिक के भक्तों और प्यारों का मालिक से रिश्ता होता है, संबंध होता है। कोई चीज आप लहर के स्पुर्द कर दें, लहर साथ लेकर समुन्द्र की तह में बैठ जाएगी, क्योंकि लहर समुन्द्र का ही हिस्सा है। लहर समुन्द्र से अलग नहीं की जा सकती। इसी तरह मालिक के भगत और प्यारे यहां होते हुए भी उस मालिक के साथ होते हैं, मालिक से अलग नहीं किए जा सकते। जब हम उनके स्वरूप का ध्यान करते हैं, उनके जरिए अपने आप हम भी मालिक के अंदर समा जाते हैं। गुरु साहब कहते हैं, हमें अपने गुरुमुखों के, अपने सतगुरु के स्वरूप का ध्यान धरना है। इसलिए गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, गुरु की मूरत मन में ध्यान। गुरुमुखों के स्वरूप को अपने मन में रखना है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। सिमरन के जरिए ध्यान को वापस आंखों के पीछे लाना है। ध्यान के जरिए ख्याल को यहां ठहरने की आदत डालनी है। वहां पहुंचकर हमारा ख्याल अपने आप मैग्नेट की तरह शब्द या नाम के साथ जुड़ जाता है। जब तक हमें घर का दरवाजा नहीं मिलता, घर के दरवाजे को हम खटखटाते नहीं, खोलते नहीं, हम घर के अंदर दाखिल किस तरह हो सकते हैं? हमारा घर सचखंड है, उसका दरवाजा आंखों के पीछे है। हमें उस दरवाजे की खोज करनी है, उसको खोलना है। किस तरह खोलना है? सिमरन के जरिए खोलना है, ध्यान के जरिए खोलना है। इसलिए हजरत ईसा कहते हैं, नॉक इट शैल ओपन, सीक ये शैल फाइंड। उसकी सच्चे दिल से खोज करो, मालिक जरूर दिया करेगा, तुम्हें दरवाजा मिल जाएगा। जब तुम सिमरन के जरिए दरवाजे की खोज कर लोगे, उसको खूब खटखटाओ, मतलब बार बार सिमरन और ध्यान के जरिए ख्याल को उस नुक्ते पर खड़ा करने की कोशिश करो, तुम्हारा दरवाजा जरूर खुल जाएगा। दरवाजा बाहर से खटकाया जाता है, अंदर से खोला जाता है। जब अंदर से खुल जाता है, हम घर के अंदर दाखिल हो जाते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि सिमरन के जरिए, ध्यान के जरिए माया में से मोह या प्यार को निकाल कर अपनी सूरत को आंखों के पीछे अपने घर के दरवाजे पर इकट्ठा करो, फिर तुम अपने आप शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर दोगे, शब्द की आवाज को पकड़ना शुरू कर दोगे, उस आवाज की धुनकार धुनों के जरिए, उस निर्मल नाद के जरिए तुम अंदर अपने घर का रुख कायम कर लोगे, उस ज्योति या प्रकाश के जरिए अंदर रूहानी सफर तय करना शुरू कर दोगे और फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस आ जाओगे।
गुरु का ध्यान धरो हृदय मन को राखो थाम विद्याल तेरी दया विचारे दम दम करें सहाम।
स्वामी जी महाराज समझाते हैं कि इस नुक्ते या केंद्र पर परमात्मा हर एक पर दया कर रहा है, हर एक पर मेहर और बख्शिश कर रहा है। हम उस दरवाजे या नुक्ते पर ही नहीं पहुंचते, हम उस नुक्ते पर अपने ख्याल को इकट्ठा नहीं करते जहां परमात्मा दया करता है, मेहर करता है, बख्शिश करता है। गुरु रामदास जी कहते हैं, नौ दरवाजे नवे दर फीके, रस अमृत दसवें चुईजे। भाई, आंखों के नीचे नीचे इंद्रियों के भोग हैं, विषय वकारों शराबों कबाबों की लजते हैं। अगर तुझे रस से भरे हुए अमृत को पीना है, जिसको पीकर तू अमर हो सकता है, जिसको हासिल करके तेरा मरण जन्म के दुखों से छुटकारा हो सकता है, तो वह जगह तेरी आंखों के पीछे है, वह अमृत तेरी आंखों के पीछे बरसता है। जिस अमृत को पीकर हम अमर होते हैं, वह अमृत कहीं बाहर नहीं मिलता, वह अमृत 24 घंटे हर एक की आंखों के पीछे बरस रहा है। लेकिन हमारा मन यहां से उतरकर सारी रचना में फैला हुआ है। रोज कितनी भी जबरदस्त बारिश होती रहे, अगर बर्तन ही उल्टा करके रखा हुआ है, सोच लें उस बर्तन के अंदर पानी की एक बूंद नहीं जा सकती। हिम्मत करके बर्तन को सीधा कर दें तो दूसरी नहीं तीसरी बारिश वह भर जाएगा। जिस मन को उस नाम को पकड़कर निर्मल या पवित्र होना है, ब्रह्म त्रिकुटी अपने ठिकाने पर पहुंचना है, वह मन तो यहां से उतरकर सारी रचना में फैला हुआ है। जब तक हम इसको सिमरन और ध्यान के जरिए आंखों के पीछे इकट्ठा नहीं करते, हम उस शब्द को किस तरह पकड़ सकते हैं और शब्द को पकड़े बिना हम मन को ब्रह्म त्रिकुटी इसके ठिकाने किस तरह पहुंचा सकते हैं। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मालिक तो सब पर दिन रात दया करता है, लेकिन हम उसकी दया से फायदा नहीं उठाते।
छोड़ भोग क्यों रोग बिसावे, या में नहीं आराम।
अब आप समझाते हैं कि बहुतेरी उम्र शराबों कबाबों की लस्तें लेकर देख ली, बेटे बेटियों से प्यार करके देख लिया, कौमों मजबों मुल्कों के झगड़े देख लिए, धन दौलत कमा कर देख लिया, अगर आज तक आपको इनमें से सुख और शांति नहीं मिली, तो अब क्या उम्मीद किए बैठे हैं कि आप इनसे सुख प्राप्त कर लेंगे, शांति हासिल कर सकेंगे? ये भोग तो दुखों का कारण है, दुखों का घर है। हम इन भोगों में सुख ढूंढते हुए उल्टा और ज्यादा दिन रात दुखी होते जा रहे हैं।
गुर का कहना मान प्यारे, तो पावे विश्राम। दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम।
स्वामी जी महाराज कहते हैं कि मनमत पर चलकर तुम सुख हासिल नहीं कर सकोगे, केवल गुरमत पर चलकर ही सुख हासिल कर सकते हो। मनमत तुमको बार बार दे के बंधनों में ले आएगा, 84 के जेल खाने में कैदी बनाकर रखेगा। गुरमत इन बंधनों से आजाद करके तुम्हें अपने असली मुकाम पर पहुंचा देगा, वापस मालिक से मिला देगा।
राधा स्वामी कहते सुनाई, खोज करो निज नाम।
श्री हजूर स्वामी जी महाराज ने बड़ी अच्छी तरह दुनिया का नक्शा खींचकर दुनिया की हालत बयान करके हमें समझाया है कि इससे हम सुख और शांति हासिल नहीं कर सकेंगे। अगर सुख और शांति प्राप्त करनी है तो मालिक की खोज करो। सब कुछ बयान करके आप फरमाते हैं, खोज करो निज नाम। उठते बैठते चलते फिरते सच्चे शब्द के साथ ख्याल जोड़ो, सच्चे नाम के साथ ख्याल जोड़ो। जो कुछ मिलेगा उस शब्द या नाम की कमाई से मिलेगा। हमें भी चाहिए कि आपके उपदेश से फायदा उठाकर अपने ख्याल को सच्चे शब्द के साथ जोड़कर रखें, सच्चे नाम के साथ जोड़कर रखें।
दुख तेरा सब दूर करेंगे, देंगे अचल मुकाम। राधा स्वामी कहते सुनाई, खोज करो निज नाम।